पूर्व रहने वाले पहले अब संन्यास लिया है श्री भक्ति वेदांत दामोदर महाराज, 5 मिनट को हरि कथा कुछ बोले। इन्होंने आकर के हिंदी भी सीख लिया है, अंग्रेजी में तो खूब अच्छी तरह से बोल सकते हैं, तब हिंदी में भी कुछ बोल सकते हैं, इसलिए हिंदी में ही ये बोलेंगे।
माया ये महामाया कौन है? ये मेरा शक्ति बहिरंग शक्ति बहुत शक्तिशाली है, और जो अर्जुना जो हमको एकांत आश्रय ग्रहण करते हैं मेरा भजन करते हैं माया से मेरा चरण छू के पाए श्री कृष्ण के चरण में, माया को छोड़ सकते हैं और कृष्ण के चरण को लाभ मिल सकते हैं। सो अभी बोल गया क्या इसलिए ये एकमात्र उपाय है क्या इस माया के बीच से गुरुदेव गुरु आत्मा गुरुदेव आत्मा और भक्ति की शाम गुरुदेव आत्मा एकमात्र उपाय है जो हम मानी गुरु के चरण में लगा। किसलिए? गुरु जी कौन है? गुरु भगवान के दास और गुरु भी भगवान के एक प्रकाश है। जब भगवान भगवान बहुत दयामय है, जब भगवान ने सब कृपा एक मूर्ति को आते हैं ये गुरु जी, गुरु जी भगवान के दास जो आते हैं एकाधिक शरणागति करते हैं गुरु के चरण में, क्या होंगे आपने आप जो बाकी है गुरु जी का दिल में आपने आप मेरे शिष्य को लगते हैं अपने आप होते हैं। इसलिए आपके चरण परिवार ने कहा खूब सारा ढंग से सुना हम बहुत भाग्यशाली। एक कुछ दिन पहले गुरु जी बोला जैसे कोई पति और पत्नी संबंध होने चाहिए तब शादी होने के बाद संबंध आपने आप पता है, लेकिन कोई प्रश्न क्या सके हम लोग भगवान श्री कृष्ण से नहीं देखा और हमारा संबंध कैसे होंगे? गुरु जी बोला ऐसे नहीं, भगवान सामने पड़ता है रुक्मिणी श्री रुक्मिणी देवी कृष्ण शादी के पहले श्री नारद मुनि से सुना कृष्ण की इतना सुंदर है अनंत कंदा कोटि कमलीय वैशिष्ट्य सोमन कंदा कोटि कोटि कंदा को से सुंदर है श्री कृष्ण बहुत गुण वाली है सब गुण है इनके पास बहुत दया है सब कृष्ण का गुण रूप लीला को विशिष्ट है रुक्मिणी को सुनाया और रुक्मिणी देवी के सुनने से रुक्मिणी को रा कृष्ण का प्रति उत्पन्न हो गया वो बात संबंध ज्ञान हो गया संबंध हो गया। इसलिए हमें कृष्ण से नहीं मिला लेकिन सदगुरु या वैष्णव गुरु का ये हाल के साथ बहुत शक्तिशाली है। हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध कृष्ण का प्रति सुनि मात्र से आप यहाँ उत्पन्न हो जाएंगे ये बहुत बारह साल पूर्व देश है और हम कुछ जॉब किए देवी को मांग कीजिए गुरु जी के चरण ध्यान से सुने
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणं प्रीते। सप्रथम में अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षि मद भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत की ज्ञापन करता पश्चात त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वर्ग उपस्थित सज्जन मंडली, मातृमंडली, वैष्णव वैष्णवी, कल हम लोगों ने नंद बाबा का कृष्ण के प्रति कितनी ममता और कितना प्रेम है संक्षेप में कुछ वर्णन किया। सारी रात रोते रहे नंद बाबा और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते रहे और उनके स्मरण में कोई चीज आया ही नहीं, ऐसी ममता कृष्ण के प्रति हम लोगों के भी होनी चाहिए। हम लोग तो स्वप्न में भी कभी आते हैं नहीं आते हैं ये भी ठीक नहीं, काम में उलझ जाते हैं और कृष्ण की विस्मृति हो जाती है अधिकांश रूप में, किंतु होना चाहिए नंद बाबा जैसी ममता। सवेरा हुआ, उद्धव जी ने पासे ही नंद गांव के पासे कृष्ण कुंड है, अब उसका नाम कृष्ण कुंड हो गया क्योंकि कृष्ण उसमें स्नान इत्यादि करते थे। उन्होंने स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त में और अंधी किया। प्रत्येक वैष्णवों को क्या, प्रत्येक जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब लोगों को अंधी त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, विशेष करके गुरु मंत्र में जो दीक्षित हैं, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र को सवेरे करेंगे, दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण भी करें। उद्धव जी स्नान करके अंगी किया और एक अनहोनी सी चीज देखी, कदम्ब क्यारी, कोटि कोटि कदम्ब के पेड़ हैं, फूले हुए हैं, सुगंध आ रही है और उसमें देखा बहुत सी गोपियां बिना खाए पिए जब से कृष्ण नंदगांव से मथुरा गए हैं खाना पीना छोड़ दिया है, स्नान भोजन सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी साड़ी को इसलिए नहीं धुलाती कि कृष्ण के विरह में आंसू जो निकले और वहां की धूली कृष्ण संबंधी है, उनके चोलियों में और कपड़ों में इस तरह से लगा हुआ है कि कहीं ये दूर न हो जाए, यही लालच न धोवावत साड़ी नहीं धोती, केवल प्राण है हड्डियां लग गई है। उन्होंने देखा, अरे ये कौन आया, दूसरी सखी आया कहती है ये आया तो आया किंतु सोने के रथ में चढ़ करके आया है, कौन है ये, आंखें भूल कर सकती है किंतु हमारी नाक भूल नहीं कर सकती, श्याम है किंतु श्याम नहीं, श्याम माने कृष्ण वर्ण का है किंतु कृष्ण स्वयं नहीं है। इसने कृष्ण के उच्छिष्ट कपड़ों को धारण कर रखा, पीताम्बर को धारण किया, उनकी बनमाला को भी इसने धारण किया है, मालूम होता है कृष्ण का कोई दूत होगा। दूत किस लिए आए, आने का कारण क्या है, ओ माता पिता का ऋण तो चुका नहीं सकता, जैसे भी छोड़कर के मथुरा गया है किंतु माता पिता को वो भूल नहीं सकता, क्योंकि शरीर उसका माता पिता के अंग से ही बना है, उनका जन्म हुआ है उसमें रक्त जितना पिया माता के स्तन के दूध के पान करने से ही ये बना है। इसलिए ऐसी माता पिता को कैसे भूल सकता है। किंतु यहां पर आने की क्या जरूरत है। देखो तुम कृष्ण के दूत हो, तुम रास्ता भूल कर शायद आ गए, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहां से नंद बाबा के घर में सीधे चले जाओ। एक दूसरी गोपी कहती है देखो ये सोने के रथ पर चढ़ करके आया किस लिए। अरे यहां तो गैया चराता था, लोकटी धारण करता था, कभी जूता पायर नहीं मैं नहीं लगाता था, आज वो तो मथुरा का राजा सुरसेन का वंश का राजा बन गया है। इसलिए माता पिता को यह दिखलाने के लिए कि देखो हमारे नौकर का इतना ऐश्वर्य है कि वो सोने के रथ में चलता है, तो मैं कैसा हूं, और मैं वो चारवाहा नहीं रहा। इसलिए सोने के रथ में उसको भेजा है अपने दूत को। उद्धव जी कहते हैं कि हमारा ये अनुचित हुआ, सोने के रथ में नहीं पैदल आना चाहिए, बिना जूती का आना चाहिए। और इस प्रकार से पनमाला इत्यादि कृष्ण के पीताम्बर इत्यादि से सुशोभित हूं, दिनहीन हो वेश में आना चाहिए। क्या करूं, गोपियों की उलाहना सुनी नहीं जाती, पृथ्वी दो खंड हो जाती, मैं उसमें प्रवेश कर जाता। उद्धव जी बड़े संकट में पड़े। एक आती है देखो उद्धव दूत आया है, क्योंकि इसके अंग से पीताम्बर में से वनमाला से सुगंध आ रही है। किसकी, कृष्ण के अंग में बहुत विचित्र और सुंदर सुगंध है। इसलिए फूल की माला की तो सुगंध अपनी है ही है, किंतु जब कृष्ण के अंगों में लग जाती है या राधा जी के अंगों में लग जाती है तो उनके शरीर का अंग का गंध उसमें लग जाता है, जो बड़ी भली लगती है, बड़ी सुंदर मधुर लगती है। निश्चित कर लिया और उनसे पूछा जो कल हमने परसों बतलाया था, उद्धव बतला सकते हो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ और एक निस्वार्थ, एक औपाधि दूसरा अनौपाधि। हमारा प्रेम तो कृष्ण के प्रति किसी कारण से निस्वार्थ था, अनौपाधिक था। औपाधिक प्रेम का उदाहरण हमने दिया, जिस प्रकार से वेश्या पैसे के लिए किसी से प्यार करती है, पैसा ले लिया उसको गले में हाथ दे करके अलग करती है। एक जात वेश्यागामी पुरुष किसी के पास में जाता है, प्यार नहीं करता, कामी भोगी है, वो काम हो गया चल दिया। पक्षी घोंसले में रहते हैं और घोंसला यदि जल गया, पेड़ जल गया, तो पक्षी नहीं है। हिरण वन जंगल में रहते हैं, घास फल फूल कंद मूल पत्ते मिलते हैं, खाता है। जंगल में आग लगी तो दूसरे जंगल में भाग गया। विद्यार्थी पढ़ते हैं, जब पढ़ना खत्म हो जाएगा तो गुरु के पास में नहीं आया, ये गुरु जी आप कैसे हैं, विद्या समाप्त हुई वहां से चलता था। भिक्षा मांगने के लिए कोई गया, भिक्षा देही राधे राधे करता है, भिक्षा मिल गई। घर वाले कहते हैं बाबा जी जाओ ठहर करके कोई कथा कृष्ण की सुनाओ, कल सुनाएंगे, आज फुर्सत नहीं है। ये सब प्रेम कैसा है, भौंरा एक फूल पर तब तक ठहरता है जब तक कि मधुपान न कर ले, मधुपान हो गया था तब। हमारा प्रेम तो ऐसा था नहीं, और कृष्ण का प्रेम भी ऐसा नहीं था, निस्वार्थ प्रेम। मैंने क्या, केवल देना देना है, लेना कुछ नहीं। गोपियों को कृष्ण ने क्या दिया? घर बनवा दिया, कभी कपड़े लत्ते दिए, न भोजन करने के लिए कभी दिए, न क्या दिया कभी। गोपियों ने कुछ मांगा, मांगती तो वो कुछ दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, इसलिए कृष्ण उनके ऋणी बन गए। गोपियों ने कृष्ण के लिए पिता माता भाई बंधु पति लोक धर्म लज्जा धर्म सब कुछ आर्य धर्म सबको छोड़ दिया। कृष्ण किसको छोड़ सकते हैं? मैया बाप को छोड़ सकते हैं गोपियों के लिए? ना मथुरा के भक्तों के लिए छोड़ सकते हैं? जो उनके शरणागत हो गया उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए कृष्ण उनके ऋणी बने रहेंगे, उनका ऋण नहीं चुका सकते। इसलिए हे गोपियों, मैं तुम्हारे इस सुंदर कृत्य का मैं ऋणी हूं, ऋण चुका नहीं सकता कृष्ण का। उद्धव जी देख रहे हैं गोपियों को, गोपियां उनको इस प्रकार से ताना देती हुई, जहां श्रीमती राधिका जी विरह में मरी हैं कि जीवित हैं, मूर्छित हैं, ये भी पता नहीं। कमल के पुष्पों की सज्जा है वो सूख गई, और उनको चंदन दिया गया है, चंदन भी सूख गया। बची हैं कि जीवित हैं देखने के लिए रुई का फाह लेकर के इसमें दे रहे हैं, ओ थोड़ी थोड़ी जीवित रहने की आशा है। और उन्होंने एक घोड़े को आते हुए देखा, काला, और देख करके ध्यानति अंग संगमम, कृष्ण बिना रमणियों के रह नहीं सकते, हमें छोड़ करके मथुरा में गए हैं, वहां कोटि कोटि जादव हैं और उनकी किशोरी स्त्रियां हैं, कोई मान करती है मनाते हैं, दूसरी मानती है तो तीसरी मान करती है, सब समय उसी में मनाने में लगे रहते हैं। ऐसा ध्यान करती हुई और भौरे को कृष्ण का रूप समझकर ध्यानती कृष्ण संगम, वो कुछ कहने लगी। उद्धव जी चुपचाप बैठ गए दूर में सुनने लगे, और ये गोपी कह रही कौन? राधिका जी, जो मुख्या गोपी, काचिक, भागवत ने राधा जी का नाम नहीं लिया, क्यों? हमारे जैसे आप जैसे नहीं, उनको उनकी इष्ट देव राधा जी हैं। राधा जी का स्मरण होने से 6 महीने की मूर्छा हो जाती थी, तो भागवत कब सुनेंगे? सप्ताह 7 दिन में। इसलिए काची कापी अनया राधि तो इत्यादि बहुत से श्लोक है जो परोक्ष रूप से लिया, और फिर उस समय विकल्प हो गए, राधा जी का स्मरण करते हैं और प्रसंग कुछ छूट गया, उल्टा पुल्टा हो गया, फिर दूसरा आरंभ कर दिया। ऐसा भागवत के मर्मज्ञ लोग देख करके टिकाऊ में ऐसा करते हैं, हम लोग तो उतने मर्मज्ञ हैं नहीं जो समझेंगे ये कहां प्रसंग क्या हुआ बदल गया। तो इस तरह से मधुपकित बंदो मास पिशांग्री शपथ में कुछ विलित माला कुंकुमास मास बात मधुपति अरे मधु, मधु मैंने क्या, मधु को पान करने वाला मधु कितम बंधो ठग हो, दूसरों को ठगने वाला मधु कितम बंधो, मांस पिशांगी शपथ, हमारे चरणों को मत छू, दूर बटे, अभिमान में भर कर। कहां भर रही है? बेहोश है, इसी का नाम चित्र जल, दिव्य उन्माद। गोपियां चलती फिरती हैं, किंतु मुनियों की समाधि से कोटि गुण श्रेष्ठ होता है। मालूम होता है जिस चल फिर रही है, खा पी रहे हैं, किंतु समाधि में रहती हैं।
हाँ?
सहज समाधि में करती है। इसलिए राधिका जी उसको देखती हैं, वो भौरा गुंजार करता हुआ, भनभन करता हुआ, और उनको चरणों को कमल समझकर, और उसी चरण के कमल को समझकर उसका मधुपान करने के लिए उस पर बैठना चाहता है, और भनभन करता है, गुंजार करता है। राधिका जी कहते, अरे तू कहां से आया? तुम मधुपुरी से आया? यहां पर मधु का होलसेल डीलर है, और वो डीलर कौन है? कृष्ण सर। वहां पर तुम उसके बंधु तुम हो, और वहीं से मधुपान किया, मधुपान करके यहां आ रहे हो, दूर हो गए, अशब्द और अपवित्र। तू अपवित्र है, शराब पीने से आदमी अपवित्र होता है, शराब नहीं पीना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है तुम्हारे समझ में नहीं आता, हट जाओ। वो तो झंकार जब करता है कुछ मधु भ्रमर, कोई कहा मैं समझ गया तू जो क्या कह रहा है। अरे यही कह रहा है कि देवी मैं पवित्र कैसे हुआ, और कृष्ण तो मदिरा पान, उनकी मदिरा की दुकान नहीं है, और मैं वहां से नहीं आया, मैं तो वृंदावन का ही रहने वाला हूं, मैं थोड़े वहां से आया, और मधुपान मैंने नहीं किया है, यही कह रहा है। अरे मूर्ख, मैं नहीं जानती उनको, मैं जीवन से ही जानती हूं, मधुपान करते हैं, कैसी कैसी मधु। यहां पर हम लोग या टीकाकार कहते हैं प्रेम का मधुपान करते हैं, ये मदिरा पान नहीं करते। हाँ बलदेव जी कभी कभी या कृष्ण कभी मधुपान तो थोड़ा जरूर करते हैं, शहद हो गया, आध घंटा हो गया। अच्छा, इसलिए उसको मना करने लगे। तो तुम द्वैत श्लोक आप वही ठीक है। अच्छा तो कीर्तन कर दो भाई, थोड़ा तुम यह तो भालो ही बोलो।
Thank you.
कथा में आ जाइए। उसकी झंकार को सुन करके राधा जी कह रही हैं, अरे मैं समझ गया तू जो कुछ बोलना चाह, मैं तो यही कहता जब आप पवित्र नहीं, मैं मथुरा से नहीं आया, मैंने मधुपान नहीं किया, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, रखो अपनी बात, मैं सब समझती हूँ, मैं नहीं जानती, शपथ ना कुछ बिले तमावा, हम लोगों की शपथियां हैं मथुरा वाली, उनके गले जो माला है, कृष्ण ने उनका आलिंगन किया, वो माला विदुलित हो गई और उनके वस्तक्षल का कुमकुम उस फूल पर लग गया, और तू फिर उस पर बैठा और बैठ करके यहां आया है और कहता है ये तो प्रमाण में दे रही हूं, बोलो सच है कि नहीं। देवी जी ये बात ठीक नहीं, तो तुम्हारा ये गुल्फे जो हैं मूछ हैं ये कुमकुम में रंगी हुई क्यों है, तो इसलिए है देवी जी कि जन्म जाती हमारी ये गुल्फे कुछ पीली रंग की होती हैं, वो कुमकुम इत्यादि रंगों से यह रंगी हुई नहीं है, झूठ मत बोल, मैं सभी जानती हूं। अरे जिस दूध की ऐसी स्थिति जो पूरा भला नहीं जानता है जो कैसे इसको मनाने के लिए जाता है, तो उसके मालिक की क्या दशा हो, जो बद्धवंशियों की सभा में जब जाएगा और उनके चिन्हों को उनकी पत्नियों से मिलने का चिन्हों को जब वो देखेंगे, जदवंशी छोड़ेंगे नहीं, उन्हें अपमानित करेंगे प्रताड़ित करेंगे, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ, यहां ठहरने की जरूरत नहीं है। ये प्रलाप अनुलाप संलाप और 10 प्रकार के ये जल्प हैं, दिव्य उन्माद में होते हैं, साधारण स्थिति में नहीं होंगे, ये गोपियों में ही हो, या ऐसा कोई चैतन्य महाप्रभु जब प्रकटित हुए थे उनके अंगों में ये सब देखे जाते थे, उनके भक्तों के अंगों में देखे जाते थे। यह एक कथा प्रसिद्ध है, वृंदावन में गोस्वामी लोग थे हमारे रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी गोस्वामी का, गोपाल भट्ट जी बहुत सुंदर सुरेले रूप में बड़े रसिकता करते हुए भागवत की कथा करते, अपने भी आंखों से आंसू झरने लगता, गला रुद्ध हो जाता, बैठने वाले सब रोते और किसी का नाक से मुख से लाट टपकने लगते और तरह तरह के चिन्ह सब प्रकटित होते, अष्टसात्विक भाव, और रूप गोस्वामी वहां पर बैठे थे, उनको कुछ नहीं हुआ, लोगों ने देखा जे सबको तो ये हो रहा है उनको नहीं हो रहा है, तो गए देखा जे बचे हुए हैं कि मूर्छित हो गए हैं, न क्या हुआ है, देखा जैसे मूर्छित है, आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ है, तो उसमें बतलाया गया थोड़ा सा पानी रहता है तो मछली उसे गंदा कर देती है और अथाह पानी हो तो नहीं। ये अष्टिक सात्विक विकार भी रूप गोस्वामी जैसे प्रेम के गंभीर सरोवर है, उसमें यह अष्टसात्विक मछली की भांति उस तालाब को गंदे नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे भक्त लोग महाप्रभु जी में अष्टसात्विक विकार ज्वलित प्रज्वलित इत्यादि रूप में देखे जाते थे, गोपियों का वही भाव है। इतने में वह भ्रमर फिर झंकार करने लगा, झंकार करने पर राधिका जी कह रही सकित अधर सुधां स्वांग मोहिनी पाई सुमनस इव सद तत्तजेस्मान भवात्ते परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्म्या ह्यपवत चेता उत्तम श्लोक जलपय सकित अधर सुधां। स्वामी जी कृष्ण ने हमको भेजा है आपको मनाने के लिए, आप उन पर कलंक करना लगाइए, वो सब प्रकार से पवित्र हैं और केवल मात्र आप ही के प्रेम में मुग्ध हैं,
इसीलिए हमको मनाने के लिए भेजा है। और तुम ये कह रहा है, देखो सकृत अधर सुधाम स्वांग मोहिनी पाई, ये कृष्ण है, कैसे कृष्ण नाम नहीं लेती, कृष्ण नाम लेने से उनको और विरहाग्नि तड़प उठती है। सकृत अधर सुधाम, उन्होंने अपनी अधर सुधा को जोर करके हमें पान कराया, पान किया नहीं, पान कराया। उनकी अधर सुधा में एक ऐसा दिव्य अमृत रस है जिसको पाने से, जिसके पीने से लोग पागल हो जाते हैं। उसी का थोड़ा सा रस बंसी के माध्यम से जगत में देते हैं, सभी लोग मतवाले होकर के कृष्ण की तरफ में दौड़ाते हैं। गोपियां कैसे दौड़ी, पति की सेवा कर रही थी छोड़ दिया, रसोई बना रही थी तवे पर रोटी जल रही है और बस उलाटा नहीं चल पड़ी, कोई दलिया बना रही थी उतारने लायक हो गया उतारा नहीं चल पड़ी, कोई आभूषण पर रही थी वो पागल होकर के कमर की पेटी गले में लगा ली और गले वाली कमर में लपेट लिया, कोई एक आंख में आंजन दे रही थी बस वहीं से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पतियों को परवेशन कर रही है, बच्चों को दूध पिला रही है, सब छोड़। और जो जो नहीं आ सकी, जिनको पतियों ने कमरे में बंद करके शिकल चढ़ा दी लठिया लेकर, वो क्या किया, एकदम शरीर से अपने मन को अलग करके सबसे पहले कृष्ण के पास में पहुंचे। क्या है, तीव्रताप धुता सुधा ध्यान में ऐसी मत हो गई और कृष्ण को प्राप्त करके उनका अशुभ तशुभ सब खत्म हो गया और विरह ताप से वो सब उनका अशुभ जल गया। और कृष्ण को पहले ही प्राप्त हो गए और तो गोपियां पीछे मिली, वो पहले पहुंच गई। ऐसे कृष्ण के बंसी में वो सुधा है और गोपियों एकदम गोपियां करें हमें पिलाया, एक बार जोर से पिला दिया, पी नहीं रही थी। सकृत अधर सुधाम स्वांग मोहिनी पाई सुमनस, सुमनस माने होता है दो, एक सुमन सुमन वाले, एक सुमन, सुमन माने पुष्प और सुमन माने होता है ये भौरे को भी कहते हैं सुमन, पवित्र। हम लोगों का मन कैसा है, पवित्र है, कृष्ण के प्रति पवित्र अनुराग है। और तुम जैसा काला वो सुमन से युवा, जैसे एक सुंदर सुगंधित फूल के ऊपर में भौंरा बैठ करके उसका मधु पान करके इतना पागल हो जाता है कि गंदे फूलों पर भी जाकर के बैठ जाता है। तात्पर्य क्या, उलाहना दे रही है, यहां हम गोपियां इतनी सुंदरी मधुर रूप गुण वाली और हमें पिला करके और कहां गया, मथुरा में कुब्जा जैसी को रानी बना दी। भवाद्रिक तुम्हारे जस जैसे वो परिचरति कथम तत्पाद पद्म पद्म भ्रमण झंकार करने लगा। मानो कह रहा है ये उत्प्रेक्षा कर रही है राधिका जी, मानो ये कह रहा है स्वामिनी जी यदि कृष्ण इतने बुरे हैं तो लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा क्यों करते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा ही नहीं क्या करते, उनके वस्त्राक्षर पर शीर के रूप में है, वो स्वर्ण रेखा के रूप में है, कभी छोड़ती नहीं है उनके चरण कमलों को। तो ऐसा तो वो कहता है कि स्वामिनी जी ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे, ऐसा मत कहो तुम। उत्तम श्लोक जल पाई, हम लक्ष्मी जी नहीं है, लक्ष्मी जी उनकी चुपनी चुपड़ी बातों में भूल जाती हैं, वो जानती नहीं है, अबोध हैं। और हम लोग क्या, सब जानती हैं, उनके
नश नश को हम जानती हैं, इसलिए हम उनकी चुपनी चुपड़ी बातों में नहीं पड़ती। हमसे उनसे संधि होने की कोई गुंजाइश नहीं है उस काले से। कि मैं बहुत शरण हुए कायस्तम जदुनाम अधिपति अग्रहाणाम अग्रता न पुराण। स्वामी जी कह रही हैं कि मैं बहुत शरण, अरे षडांग्रह माने होता है छह पैर वाला, दो पैर वाला मनुष्य, चार पैर वाला जानवर और छह पैर वाला क्या जानवर से भी गया बिता बुद्धिहीन। जानवरों को भविष्य इत्यादि का ज्ञान नहीं रहता, साधु संग कुछ नहीं कर सकते, और तुम छह पैरों वाला तो तुम मूर्ख से भी मूर्ख। तुम वो पुराने जदुपति की बातें कह रहा है ना, हम उनको बचपन से जानती हैं, आज नहीं वो पुरानी बातें होंगे। विजय सख सखी नाम गियताम तत्पसंद। अरे अर्जुन के जो सखा है ना द्वारका में है या मथुरा में है, सखी नाम उनकी जो सखा है, विजय सखा माने कौन हुआ, कृष्ण है, द्वारकापुर वाले का लक्ष्य कर रही हैं, हस्तिनापुर वाले का अर्जुन का। और सखीनां गीयताम तत्प्रसंग, वो कैसे उनको मना रहे हैं मथुरा वाली गोपियों को, जदुरमणियों को, एक मान करती है दूसरे को फिर मनाते हैं, तीसरे को मनाते हैं, जो मान करती है जब ठीक हो जाती है तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, तुम वहां जाओ, हम तो एक मुष्टि चना भी नहीं दे सकती, उनके वजह से घर से निकल करके हम आए, हम तो भिक्षुक पथ के भिखारी हैं, और वो रानियां हैं उनके पास में जाओ, जब मान कृष्ण उनका भंजन करेंगे प्रसन्न हो जाएगी तो जाएगी, जो कुछ मांगेगी वही दे देंगे, वहां जाओ। मांगने का तरीका भी तो जानना चाहिए, तुमको मांगने का तरीका भी नहीं है। कल पाई उनकी इष्ट निष्ठा, जो कुछ तुम्हारे लिए जरूरत होगी जो मांगोगे वो प्रसन्न होकर के दे देंगे। रसायन, अरे नहीं ऐसी बात मत कहो भ्रमर, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे अतिरिक्त कृष्ण की प्रीति और कहीं भी नहीं है, झूठ बोलते हो। ऐसी स्त्री जगत में विश्व भर में क्या कोई रमणी है जो कृष्ण की बंसी की आवाज पर अपने को समर्पित न कर दें, उनके सौंदर्य पर उनकी मीठी चुपनी चुपड़ी बातों को अपनों को समर्पित न सके। अरे भूलोक की तो बात क्या, रसायन रसातल, यहां पर प्रहलाद महाराज जी रहते हैं, स्वर्ग की देवियां इतनी सुंदरियां सब कृष्ण पर मोहित हो जाती हैं उनकी चुपनी चुपड़ी बातों से। कपट और रुचि रहास, कपट धूर्त और मंद मुस्कान, ऊपर से हंसी और भीतर से विष भरा हुआ, भीतर काला बाहर काला, जासू। अतएव उनसे हमारी संधि नहीं होने की। चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर भयंकर, अरे हमारे पास में क्यों भेजा तुमको, तुम जाओ, ऐसी पृथ्वी लोक में भूतल में स्वर्ग में कोई भी स्त्री नहीं है जो उनके चरणों की उपासना नहीं करती, स्वयं लक्ष्मी जी करती, हम तो एक तुच्छ है, ताना दे रही, कभी क्रोध से कर रही है, कभी उपहास करती हैं, कभी लक्ष्मी जी को भी बुद्धिहीन समझती हैं, कृष्ण को भी कुछ धूर्त इत्यादि कह रही हैं। इसी प्रकार से मृगुरु कपिंद्रम विभ्यधे लुब्ध धर्म, कहते हैं जी कृष्ण के लिए हम भिखारी बन गई, उसकी बात मत कहो यहां। कहता है जैसे आप स्वामी जी उन्हीं की तो बातें कर रहे हैं, मृगुरु कपिंद्रम व्यव्यधे लुब्ध धर्म, जितने जगत में काले हैं तुम भी जैसा काला है, और जगत में काले हैं वो अंतर बाहर के ऐसे ही होते। त्रेता युग में एक काला था, उसका नाम रामचंद्र था, हमने पौर्णमासी के मुखों से सुना है। वो काला भी ऐसा था, मृगुरु कपिंद्रम व्यक्त दे लुप्त धर्म, कोई बंदर को नहीं मारता। और वो धूर्त काला क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए बाली नामक एक बंदर का वध किया। किस लिए? उसने प्रतिज्ञा की हम तुम्हारी स्त्री को लौटा देंगे और तुम हमारी स्त्री को लौटा देना। सुग्रीव से मिताली कर लू और छिप करके पेट की आड़ से मारा। क्यों किया? और स्त्री में विरूपा सूर्पनखा उसके रूप को देखकर के मुक्त हो गए। रावण की बहन बड़ा सुंदर रूप धारण किया, राम लक्ष्मण सीता के पास में गई, बोले जी ये तो मानवी है, ये सुंदरी नहीं है, मैं आपके लिए हूं, आप मुझसे विवाह कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा मेरा तो विवाह हो गया है, ये बैठी है, ये अभी तक इसकी स्त्री नहीं पास में है, ये नहीं कहा जो कुंवारा है या ब्याह। उन्होंने इस प्रकार से कहा जैसे ये अभी इसके पास में स्त्री नहीं है, जाओ इससे विवाह करो, मैं तो दूसरा विवाह है। वो गई लक्ष्मण जी के, मैं विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु देखो एक बात है, मैं दास हूं, यदि नौकरानी बननी हो तो हमारे साथ में शादी करो, और प्रभु के साथ में राजरानी बनना चाहती हो तो वहां पर जाओ उनसे शादी करो, बैठे हैं। यदि कहोगे क्यों शादी करेंगे, हमारे पिताजी को 360 रानियां थी, तो ये कौरव से विवाह कर लेंगे तो क्या हर्ज है। तो उसने क्या किया, उसके बदले में नाक और कान काट ली। अपने को तो कहते हैं कि मैं एक ही बक्तधारी हूं, और कहां उसका नाक कान काट लिया जो दूसरे भी इससे शादी ना करें, नहीं किया। और एक काला है सतयुग में, उसका नाम क्या है, बामन है, तो त्रिविक्रम बहुत बड़ा, और छल करने के लिए बामन बन करके आया। बामन माने समझते हैं ना, बाउन, नंधड़ंग आया, भिखारी जैसा, ब्राह्मण बटू जैसा आया। बलि महाराज ने पूछा जी क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तो ब्राह्मण बालक हैं, हमें रहने के लिए कुटी बनाने के लिए 3 पग जमीन चाहिए। तो हो हंसने लगे, पुलिस जैसा बामन है वैसा इसकी बुद्धि भी छोटी है, अरे तुम हाथी घोड़े राज्य और स्त्रियां मांग लो, हम तुमको सब कुछ दे देंगे, राज्य कोष दे देंगे, राज्य दे देंगे, सभी कुछ दे, नहीं हमें उससे कोई जरूरत नहीं है, ब्राह्मण बालक संतुष्ट हैं, हमको बस एक कुटी की जरूरत, 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है, जब माना नहीं कहा जाता तो ठीक है तो तुम लो, किंतु जब लेने लगा तब क्या किया, एक पैर पृथ्वी में दूसरा पैर स्वर्ग चला गया, माप लिया दूसरे मन से एकदम भोर बुआ स्वाम अजन सत तप तल तला तल पाताल रास आतल मही तल सूतल बीतल सबको माप लिया। अब तीसरा पैर कहां रखें, चला के किया, काजे से अभी हमारा तो कुछ है, हमारा शरीर तो अपना है, आपने सब ले लिया हमारा, ये शरीर को ही नाप, शरीर को नाप करके और उसको बांध दिया नाग पास में, वो तो ब्रह्मा जी प्रहलाद जी आए तो छुड़ाए। तो एक तो काला वो, इसलिए कालों से अब संधि की जरूरत नहीं। इधर भ्रमण क्या कर रहा, झनझन कार कर रहा, ओ तुम ये कहते हो यदि इतना ही वो बुरा है तो उसी की ही बार बार कथाएं क्यों नहीं, दूसरी कथा कुछ काले के लिए नहीं है, लाखों कथाएं तो हैं, उसी काले की कथा ही क्यों कर, अजय कृष्ण को हम छोड़ सकती हैं, कृष्ण की लीला कथाओं को हम छोड़ नहीं सकते, ये हमारे लिए असंभव। इसी प्रकार से बहुत अभी बहुत बाकी रह गया, किंतु समय हो गया 6, सिर्फ हमारे सुनाने की तो पूरी इच्छा थी, अब कुछ रख देता हूँ जो अगले वर्ष आऊंगा तो फिर तो कुछ सुनाना होगा, बड़ी सुंदर जो रह गई है चीजें।
सुनाऊंगा। उद्धव जी इन बातों को सुन करके बड़े विचलित हो गए। उन्होंने अंत में यही कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीना पादरेणुमभीक्ष्ण स जासान हरि कथोद्गीत पुनात पुनत्व अहो आशाम हो चरण रेणु श्याम हम श्याम। वृंदावन में कहीं भी गुल्म लता औषधि घास दूध की कोई भी कुछ हो जाए, क्यों जब कृष्ण के मिलने के लिए गोपियां विचार करती हैं तो उनकी चरण की धूली से वृंदावन सब लगा हुआ है। उनकी धूली को पाने के लिए कहीं तृण लता गुल्म हो जाऊंगे और उनकी चरणों की धूली मिल गई, हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रुतियां वेद की ऋचाएं ये संकल्प तो करती हैं, उस कृष्ण को पा नहीं पाती, और हम कैसे। तो उद्धव जी कहते हैं ऐसी गोपियां कृष्ण को मुट्ठी में बंद कर रखती है, इसलिए कृष्ण की चरण गोपियों की चरण धूली पाने के लिए वृंदावन में हो कहीं दूसरी जगह हो हम घास पत्ते गुल्म औषधि कुछ भी हो करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुमभीक्ष्णश जासं हरि कथोद्गीत पुनात भुवनत्रयम्। ओ मैं नंद के ब्रज की जो गोपियां उनके चरणों की धूली एक धूली कणा की वंदना करता हूं, एक धूली कण गोपियां तो करुणा है, वहां तो बहुवचन है कि धूली है एक वचन, ये धूली कहां की होगी तब समझो, एक धूली राधा जी के चरणों की धूली, उनकी चरणों की वंदना करते हैं। जब फिर हमें ऐसे ये कथाएं उनके मुख से निकली हैं जो कृष्ण स्वयं भावरे का रूप धारण करके वो सुन रहे हैं, उनका उनकी गालियां धूर्त चोर लंपट ब्रह्मा जी की स्तुति सुनते नहीं है, और इन गोपियों की गाली सुनने के लिए ललचते रहते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ऐसे नंद ब्रज की स्त्रियों की हम वंदना करते हैं, हम लोग भी वंदना करते हैं, आप लोग भी वंदना कीजिए। ऐसी गोपियों की चरण धूली मिल जाए कभी वृंदावन में आइए, आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं। अभी कार्तिक के महीने में अग्नि पौर्णमासी से हमारी ब्रजमंडल की यात्रा होगी, विदेश से करीब करीब 600-700 प्रतिनिधि आ रहे हैं, भारतवर्ष से भी बहुत से इधर उधर से आएंगे सारे भारत, आप लोग भी आइए और ऐसी गोपियों की चरण धूली जो दुर्लभ है आपके जीवन में भी संगठित हो, यही मैं प्रार्थना करके आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। विशेष करके मैं हरि मंदिर में हरि मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, हरि वहां वाला उन्होंने पहले दिया, और इसके पश्चात यहाँ डोंगरे ब्राह्मण सभा की जो मैनेजिंग कमेटी है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, भगवान उन पर भी दया करें। बहुत सफल आयोजन रहा किंतु यहाँ पर लोगों की थोड़ी सी उपस्थिति कम हुई, शायद यहाँ के जो निकट के रहने वाले हैं उनकी रुचि नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोगों को कश्मीरी पंडितों को शायद दो चार ही यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो चिन्ह पहचानता, मुझे अंदाज ऐसा है कि वो लोग इधर वाले रुचि नहीं रखते हैं। हरि मंदिर के जिधर मैं हूँ उधर में लोगों की बड़ी रुचि और बड़ा उत्साह है, यदि ऐसे ही गति रही तो मैं कह दूंगा कि हरि मंदिर में ही हमारी व्यवस्था की जाए। तो आज यही कह करके और सब लोगों को श्रोताओं को भी धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर हरि कथा हो वक्ता को पहले श्रोता को प्रणाम करना, श्रोता नहीं रहे तो वक्ता अकेले क्या कर लेगा, उनको देख करके हरि कथा, परीक्षित नहीं रहते तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या करते, इसलिए 88,000 इसमें सुख गोस्वामी क्या कर लेते, इसलिए आप श्रोताओं को भी धन्यवाद है और पुरुष हो चाहे महिलाएं, महिलाओं की संख्या कुछ अधिक है, इन लोगों की इसमें रुचि रहती है, इसलिए